ओम शांति। मैं जब हाल में आई तो बहुत सारे मनसा सेवा के लिए कहाँ कहाँ गए हुए थे, तो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक बार इस सबको यहाँ वापस हाजिर किया जावे, ताकि सबके आगे आज का जो विषय वो रखा जाए। अभी नेचर का दो अर्थ होता है, एक है चेतन आत्मा की नेचर मनुष्य की, और दूसरा प्रकृति को भी नेचर कहते हैं। तो योग और सेवा के द्वारा हम अपनी नेचर को भी चेंज कर सकते हैं और प्रकृति को भी हमें चेंज करना है, क्योंकि विश्व कल्याणकारी बाबा ने हम बच्चों को विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनाया हुआ है, और विश्व के अंदर ये पांच तत्व भी आते हैं, प्रकृति आती है, इनको भी पावन करना हमारा काम है, इसकी नेचर को भी चेंज करना। इस समय प्रकृति बहुत चिड़ी हुई है, क्योंकि उसको मनुष्यों ने बहुत पीड़ित किया है, तो वो अभी मनुष्यों का बदला ले रही है, इसीलिए उसको शांति के दान की बहुत आवश्यकता है। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये जो पांच तत्व हैं, इनको भी पावन करना ये तुम्हारा ही काम है। शिव बाबा पतित पावन है, वो हम आत्माओं को पतित से पावन बनाता है, और हम बाबा के बच्चे योग बल से प्रकृति को पतित से पावन बनाते हैं। उसमें जीव जंतु आदि सब आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम हम बच्चों को बाबा ने दिया हुआ है, क्योंकि ये प्रकृति हमारे को आगे चल के बहुत काम में आने वाली, हमारी दासी बनने वाली। पर इस प्रकृति को दासी बनाने के लिए पहले हमें इसकी सेवा करनी पड़ेगी, अगर हम इसकी सेवा नहीं करेंगे तो हमारी ये अंत में सेवा नहीं करेगी, और नई दुनिया में फिर कैसे सेवा करें। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने इसके ऊपर बहुत अच्छा समझाया, बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आज तुमको अगर कोई हॉल लेना होता है प्रोग्राम के लिए, और तुम उस व्यक्ति के पास जाते हो हॉल वाले के पास, और उसको कहते हैं हमारे को सेवा के लिए हॉल चाहिए, हमको आप फ्री में दो, क्योंकि हम तो फ्री में सभी को प्रदर्शनी बताते हैं, प्रवचन करते हैं, तो आप भी ये सेवा करो। परंतु क्या होता है, आपको जो रिस्पांस मिलना चाहिए इतना रिस्पांस नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत वो कम कर डालेगा परंतु फ्री में नहीं देगा। कारण तो बाबा ने इसका कारण बताया, इसका कारण ये है क्योंकि पहले आपने उसकी सेवा की नहीं। अगर पहले से आप उसकी सेवा की हुई होती थी आत्मा की, तो जरूर आपको सेवा के लिए खुद की सेवा ऑफर करता था। तो वैसे ये जो प्रकृति है, जब लास्ट में इसकी बहुत हलचल होगी, पांचों भी तत्व जब नाचेंगे, शिव की बारात जाएगी, किसी को डुबोएगी, किसी को जलाएगी, किसी को दबाएगी, अगर हमने अभी से इसको योग का दान दिया होगा तो हमको ये बचाएगी, हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। तो उसके लिए हमारे को पहले इस प्रकृति की सेवा करने की आवश्यकता है, इसको योग का दान देने की आवश्यकता। और यहाँ तो हमारे को ये अंत में बचाएगी, परंतु नई दुनिया में ये हमारी दासी बन करके चलेगी, प्रकृति हमारे ऑर्डर में रहेगी। इतने वैभव हमारे को ये सामने से परोसेगी, देगी, जो माला माल कर देगी, पर पहले हमें इसकी सेवा करनी पड़ेगी। एक है ये प्रकृति को प्रकृति की नेचर की ओर करना, नेचर की ओर करना, और दूसरा है चेतन आत्माओं की ओर करना। तो अभी हम देखते हैं, जैसा अभी अभी कमलेश बहन आप लोगों को बता रही थी कि स्वभाव संस्कार ये जो है इसको भी नेचर कहते हैं। अभी जो नेचर है हर एक आत्मा की, वो मध्य की नेचर है, क्योंकि ये जो सृष्टि चक्र है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो इसका जो मध्य है वो है द्वापर। तो द्वापर से लेके जो हम विस्मृति में आ गए, विस्मृति में आने के कारण हमारे अंदर जो पांच विकारों की प्रवेशता हुई, और जिन प्रवेशता के कारण ही हमारी जो नेचर है विकारों के अधीन होने के कारण हमारी नेचर बिगड़ने लगी। देवताओं की नेचर कितनी दिव्य थी, कितनी श्रेष्ठ थी, कितनी ऊंची थी, जिसका आज तक भी गायन और पूजन होता है, परंतु ये जो मध्य वाली नेचर है इससे हमारी स्थिति मध्यम होती गई और नीचे गिरती गई। तो अभी ये जो पुराने संस्कार हैं या पुरानी नेचर है, भाव स्वभाव है, इसको हर एक पुरुषार्थी बच्चा छोड़ना चाहता है, खुद की नेचर को दिव्य नेचर बनाना चाहता है, ईश्वरीय नेचर बनाना चाहता है, ऊंची नेचर बनाना चाहता है। अभी इस समय दो नेचर होती है, एक होता है सरल स्वभाव, नेचर माना स्वभाव, एक है सरल स्वभाव और दूसरा है सड़ा हुआ स्वभाव। आपको अक्षर जरा ऐसे लगेंगे पर है ऐसा। जो सरल स्वभाव वाले होते हैं वो सबके साथ सदैव मिलजुल के चलते हैं, उनके अंदर मोल्ड होने की शक्ति होती है, और जो सड़े हुए स्वभाव वाले होते हैं वो सबके साथ झगड़े करते रहते, यहां तक झगड़ते प्रकृति के साथ भी झगड़ते हैं। ज्यादा गर्मी होगी तो उसके साथ भी झगड़ा होगा उनका, ये क्या फालतू गर्मी पड़ती है, अरे बहुत हैरान होते हैं कितना पसीना आता है, क्या है ये सारा, अरे तुम इसके साथ झगड़ते क्यों, उसका नियम है इसलिए गर्मी होती, बरसात गिरेगी तो भी खिंच खिंच करेंगे, क्या सारे कपड़े खराब होते हैं, कपड़े सूखते नहीं, अरे पर बरसात नहीं गिरेगी तो पानी कहां से मिलेगा तुम, मतलब किसी से भी कभी भी संतुष्ट नहीं रहना, माना सड़ा हुआ नेचर। तो कलयुग में ऐसी नेचर तो बहुत मिलती है, जो मनुष्यों से तो झगड़ते ही है परंतु प्रकृति से भी झगड़ते हैं। एक उदाहरण हमेशा बताते हैं, जरा ज्यादा आपको ये हो जाएगी, सुजाग हो जाएगी, इसीलिए बता रहे, का एक माई थी, वो हमेशा सबके साथ झगड़े करती, उसके जो मोहल्ले वाले थे वो बेचारे बड़े तंग हो गए उससे कि रोज रोज झगड़ती, इसकी बड़ी सड़ी हुई नेचर है, हमारे को बहुत दुखी करती। तो एक दिन इन्होंने आपस में मिलकर के ये तय किया कि सब पुरुष तो ड्यूटी पर चले जाते हैं और जो भी माताएं हैं वो दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाना, पहले से सारे काम कर लेना, और इसको जितना बोलना है उतना बोलने देना, कोई भी जवाब नहीं देना। ठीक हो गए। उनके वहां आंगन में ये था कुआ था जिसके कारण इनके झगड़े होते थे पानी के कारण। तो क्या हुआ, इसने चालू कर दिया, सब मर गए क्या, कहाँ गए पता नहीं, दिखते नहीं, ये वो उसका चालू था, परंतु उसको कोई जवाब देने को तैयार नहीं, कोई दरवाजा अंदर हंस रहे बातें कर रहे दरवाजा नहीं खोल। आखिर इसको इतना गुस्सा हो गया, दोपहर हो गई, इसको भूख लग गई, ना खाना पकाया ना खाना खाया, लड़ने में ही उसका टाइम चला गया। फिर इसने क्या किया, एक वहां पत्थर पड़ा था वो उठा करके इसने सीधा कुएं में फेंका, तो कुएं में फेंका तो कुएं में से आवाज आई डुबुक, अरे बोला तू मेरे साथ झगड़ा करता है, तू डुबुक बोलता है, तेरा बाप डुबुक, तू डुबुक, तेरी माँ डुबुक। उसने जब भी उस गुहे के साथ झगड़ा किया तभी उसको शांति आई। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है, अभी आप बताइए मैम, ऐसे स्वभाव वाला जो व्यक्ति होगा उससे कौन प्यार करेगा, ऐसे नेचर वाले को कौन चाहेगा। तो हमेशा हमें अपने नेचर को मिलनसार बनाने की आवश्यकता है, सरल स्वभाव बनाने की आवश्यकता है। जितना हमारा स्वभाव सरल होता है, नेचर सरल होती है, उतना हम लोकप्रिय बन सकते हैं। जो सरल स्वभाव वाले होते हैं ना, वो बड़ी बात को भी छोटा कर देते हैं, और सड़े हुए स्वभाव वाले छोटी बात को भी बड़ा करके खींच खींच के रबड़ के मापक बड़ा करते रहते। तो जिसके कारण क्या होता है, जीवन में दुख और अशांति होती है। चाहे ज्ञान सुनते हैं परंतु उनके स्वभाव में परिवर्तन क्यों नहीं आता है, क्योंकि ज्ञान को जीवन में धारण नहीं करते। तो अभी हमको अपनी नेचर को सरल बनाने के लिए, अपनी नेचर को दिव्य बनाने के लिए सिर्फ एक ही बात करनी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। हमको हमेशा ये याद रखना है, हमें हमारी भेंट बाबा के साथ करनी। आप साकार बाबा को सामने देखो और उसके साथ अपनी कंपेयर करो, और किसी भी व्यक्ति के साथ कंपेयर नहीं करना, परंतु आप साकार और निराकार के साथ जरूर कंपेयर कर सकते हैं कि बाबा की नेचर कैसी और हमारी नेचर कैसी। क्योंकि कोई कहते थे ना, हमारा स्वभाव ऐसा है, तो बाबा कहते थे तुम्हारा स्वभाव आया कहाँ से, तुम तो मर गए ना, मरने के बाद तो स्वभाव बदली हो जाता है ना, अभी तुम किसके बच्चे हैं, अभी तुम ब्रह्मा की संतान हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो जो ब्रह्मा की नेचर वो हमारी नेचर, हमेशा बाप माता पिता जैसी नेचर होती है। जो शिव बाबा का है के विशेषता है, वो हमारे अंदर विशेषता है। तो हम देखते हैं साकार बाबा के अंदर इतनी क्या मोल्ड होने की शक्ति थी, इतनी मिलने की, सबके साथ मिलके चलने की शक्ति थी। जो छोटे बच्चे आते थे तो बाबा छोटे बच्चों के साथ छोटा हो जाता था, जो जवान आते थे तो उनको ऐसी भाषणा देता था, जो बूढ़े आते थे उनको भी बाबा बूढ़ों के साथ बूढ़ा हो जाता था, बड़ा खुश होता था। बूढ़े आते थे, हापुड़ की बुढ़िया आती थी, एकदम बुढ़िया बुढ़िया, बाबा बोलता था अरे मेरी हम जिन्स आ गई ये तो। और वो बुढ़िया क्या करती थी, ज्यादा कुछ ज्ञान मैन नहीं समझती, शिव बाबा करेगी और बड़ी खुश होगी, बाबा का हाथ पकड़ के रास करती, तो बाबा भी बड़ा खुशी से उनके साथ रास करता। तो जैसा व्यक्ति होगा बाबा वैसा उनके साथ हो जाता था। अपनी नेचर को बाबा ने इतना सरल बनाया था और इतना इजी बनाया हुआ था, जो हरेक इसीलिए ऐसा समझता था कि ये मेरा बाबा। अगर है कोई ऑफिशियल रहता है ना, कोई बहुत ऑफिशियल रहता, अरे ऑफिशियल काहे को रहते, जब भी देखेंगे ना चेहरा ऐसा क्या मुंह बना के चलते है तुम, क्या बात है, कहते हैं तुम रोते क्यों है, बोला हमारी शक्ल ही ऐसी, हम क्या कर सकते। तो शक्ल ही उनकी ऐसी बनी हुई होती है जो सामने वाला बात करने की उनके साथ हिम्मत नहीं रखती। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी नेचर और तुम्हारा चेहरा जो है वो ऐसा होना चाहिए जैसा देवताओं का, सदैव हर्षित मुख रहो, सदैव खुश रहो, औरों को खुशी बांटो, मुस्कुराते रहो सदैव, और एकदम हल्के रहो। तकलीफ क्या है तुम्हारे को, जब भी बाबा तुमको बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी बोझ है वो सारा मेरे को दे दो, दुनिया में ऐसा कोई है जो कहेगा तुम मेरा बोझ है, मेरे को दे दो तुम्हारा बोझ, और ही बोलेगा मेरा बोझ तू उठा। पर यहाँ तो बाबा कहता है तुम्हारा तन का बोझ है, मन का बोझ है, धन का बोझ है, संबंध संपर्क का बोझ है, जो भी बोझ है वो मेरे को देख के तुम खाली हो जाओ, खाली होकर के तुम उड़ो अपने वतन की तरफ। काय को बैठ करके है सारा बोझ उठा करके चलते, जबकि मैं बैठा हूँ कर्ण करावन हर स्वामी, सब मेरे हवाले कर डालो और तुम हल्के हो जाओ। तो जितनी जितनी हमारी मानसिक स्थिति हल्की होती है, उतना उतना हमारे स्वभाव में स्वतः ही सरलता आती जाती। जितना जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, दृष्टि हमारी रूहानी बनती जाती है, उतना उतना क्या होता है, एक दो के साथ मिलकर के हमें खुशी होती। दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, एक प्रकार के वो लोग होते हैं जब वो आते हैं तो लोग उनको देख के खुश होते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जब वो जाते हैं तभी लोग खुश होते। तो आप अपने को देखना, मैं कौन सा हूँ, आएंगे तो खुश होते हैं या जाएंगे तो खुश होते हैं, अच्छा कौन सा है? अच्छा कौन सा है? जो कहते हैं हम आते हैं तभी लोग खुश होते, हाथ ऊपर करो देखो कौन कौन है, जरा एक्सरसाइज तो करो। अच्छा, ऐसा तो नहीं जाने के बाद लोग कहते अच्छा हो गया भला गई नहीं, अपनी नेचर को ऐसा कभी नहीं बनाना, अपनी नेचर को ऐसा बनाना। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा तुम दाता के बच्चे हो, दाता के बच्चे हो, इसीलिए तुमको कोई भी मिलता है तो तुमको उनको कुछ ना कुछ जरूर देना। चाहे आप उनको शांति दो, चाहे आप उनको खुशी दो, चाहे आप उनको शक्ति दो, कुछ ना कुछ जरूर दो, क्योंकि तुम्हारा योग किसके साथ है, दाता के साथ है ना। तो जितना जितना हम बाबा से योग लगाते हैं तो बाबा की शक्तियां, बाबा के गुण जो है उसका संग का रंग हमारे पर चढ़ता जाता। तो आप जब ये देना सीख जाएंगे ना, आपकी नेचर एकदम सरल हो जाएगी, क्योंकि देना जो है ये दाता के गुण जो है ये बहुत श्रेष्ठ गुण है। तो बाबा की याद के द्वारा वो हमारे अंदर क्वालिफिकेशन आ जाती है, जो हम लेने की इच्छा नहीं रखते परंतु हमेशा देते ही रहते। तो जितना देंगे उतना क्या होगा, आपको सब प्यार करेगा। ऐसा तो होता है ना, जो देता है उसके साथ प्यार करते हैं, लेने वाले के साथ कोई प्यार करता है? तो कभी भी ये इच्छा नहीं रखना कि सामने वाला हमको रिस्पेक्ट देवे तो हम उसको रिस्पेक्ट दें, वो हमारे को खुशी बांटे तो हम उसको खुशी बांटे। नहीं, हमारा काम है उसको देना, वो लेवे नहीं लेवे परंतु हमको देना ही देना। तो क्या होगा, जब ऐसी नेचर बना लेंगे, अपनी दातापन की नेचर बनाएंगे, तो जैसा सब बाबा के साथ प्यार करते हैं ना, वैसे हम भी लोकप्रिय बन जाएंगे। लोगों को क्या अच्छा लगता है, लेना अच्छा लगता है, देना नहीं अच्छा लगता है? जिनको लेने की आदत होती है वो कभी देते हैं क्या किसी को? कभी भी नहीं देंगे। बोला एक आदमी था बहुत, 12 बज गए। अच्छा ठीक है।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में विनाश खड़ा आगे।
सतयुग में अब तुम्हें आना है, सतयुग में अब तुम्हें आना है,
तुम्हें गाना है।
तो बात ये चल रही थी कि बाबा का जो दातापन का गुण है वो हम लोगों को अपने अंदर भरना है, कभी भी लेने की इच्छा नहीं रखनी है। तो बात ये थी, एक बार एक आदमी था पैसे वाला बहुत, पर बड़ा कंजूस था। उसने कभी किसी को दान नहीं दिया था, कभी मदद नहीं किया। तो उसने अपनी खेती में क्या किया, कुआं खोदा, पानी नहीं लगा था, आधा कुआं खोद लिया था, काफी ये हो गया था वो खड्डा। और रात को वहां से जा रहा था तो उसमें गिर गया। तो अभी निकले कैसा बेचारा, तो चिल्ला रहा था मेरे को निकालो निकालो निकालो। तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए वहां पर, उसको बोला आप जरा हाथ दो, क्योंकि किसी को निकालेंगे तो हाथ कोई देगा तो पकड़ के ऊपर निकालेंगे ना, हाथ दो तो मैं आपको निकालू। तो हाथ देने को तैयार ही नहीं है। ऐसा करते करते कितने घंटों हो गए और चिल्ला रहा है निकालो निकालो, तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए। एक वहां से बुजुर्ग जा रहा था, उसने कहा क्या बात है, बोला ये सेठ जी अंदर गिर गया है और इसको निकालते हैं तो ये तो हाथ ही नहीं दे रहा है। उसने कहा दूर हटो तुम, मैं इसको निकालता हूँ। तो उस बुढ़े ने क्या किया, उसको बोला भाई मेरा हाथ पकड़ ले, हाथ ले। एक सेकंड में उसका हाथ पकड़ के वो ऊपर आ गया। बोला अरे इसने कभी इसने जन्म में किसी को दिया ही नहीं तो ये आपको हाथ कैसे देगा, आपका काम है उसको हाथ देना। तो देखो लेने की ऐसी भावना होती है, समझे कि हमारे को सामने वाला देवे तभी मैं उसको दे, भले खड्डे में भी गिरेगा तो भी देगा नहीं किसी को। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे को क्या करना है, दाता बन के जो भी तुम्हारे दर पर आवे उसको तुम गुण शक्तियां शांति तुम्हारा काम है उसको देना, क्योंकि हमारा बाबा दाता है तो वो देता है। और ये जो देवी देवते हैं, देवता का मतलब ही क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का, कि हमें देवता बनना है, मनुष्य देवता माना भी देने वाले। तो जब हम देने वाले बन जाते हैं तो हमारी नेचर में क्या हो जाता है, आपे ही परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि अगर हम लेने और देने की बात करेंगे वो तो व्यापार होता है, पर इसमें क्या है, याद और सेवा। तो जितनी जितनी हम सेवा कर, सेवा माना ही देना हो गया, तो जितनी जितनी हम सेवा करते हैं उतना उतना क्या है हमें दुआएं मिलती हैं। और दुआएं जो है वो क्या करती है, दवा से भी ज्यादा काम करती है। आपको मालूम होगा ना, कोई देखो पेशेंट बहुत सीरियस होता है, डॉक्टर का कुछ चलता नहीं है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, फिर क्या कहता है, आप भगवान से दुआ मांगो, क्योंकि दुआ ये बहुत बड़ी चीज है। तो हम लोग जितना जितना आत्माओं को सुख देते हैं, सबसे बड़ी बात है सुख देना, तो जितना जितना हम आत्माओं को सुख देते हैं, ये सेवा हम करते हैं सुख देने की, उतनी उतनी हमारी दुआएं हमारी जमा होती जाती है। और जिन दुआओं से क्या क्या फायदा होता है, देखो जब हमको दुआएं मिलती है तो हमारा मन तो प्रसन्न होता ही है, परंतु उसके साथ साथ हमारा जो तन है वो भी निरोगी बनता। हम जितनी जितनी अन्य आत्माओं की सेवा करते हैं उतनी उतनी हमारी आयु भी बढ़ती है, हमारा तन भी निरोगी बनता जाता है, क्योंकि हम तन को क्या करते हैं, सेवाओं में लगाते हैं। तो जितना आप ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे उतना आपको रिटर्न में उसका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जब हम औरों की सेवा करते हैं तो हमको क्या मिलती है, प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है, खुशी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और खुशी भी मिलती है। और कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, जब खुशी मिल गई तो इस जैसी दूसरी कोई खुराक नहीं होती है, कोई पास में सोया होगे ना उसको जरा जगा दो, बोलना घर में जाकर सोना, अभी नहीं सोना। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखना है हम लोगों को कि औरों की आप सेवा करते जाओ, ये नहीं देखो कि इसने कितना लिया या कितना उठाया, वो नहीं करो। आपका काम है देना, लेना नहीं लेना उनका काम है। देखो बाबा हमको कितना देता है, देता ही नहीं देता है, फिर कौन कितना उठाता है, सब एक जैसा उठाते हैं। अभी अगर पूछे कि सबेरे की मुरली में क्या था तो मुश्किल को एक आध पॉइंट बताएगा, वो भी याद होगी तो बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, देंदा दे लेंदा थक पाए। देने वाला नहीं थकता है परंतु लेने वाले थक जाते। तो वैसा हम भी उस दाता के बच्चे हैं ना, तो हमारे को भी हमेशा क्या करना है, सामने वालों को देना ही देना है। जब ये सेवा हम अपने ऊपर उठा लेते हैं ना कि हमारे को औरों को सुख देना है, औरों को शांति देना है, औरों को शक्ति देना है, तो क्या होगा हमारा वो, ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ईश्वरीय प्राप्तियां ये ऐसी चीज है, आप जितना देंगे उतना बढ़ेगा, कम होने वाला नहीं। विनाशी धन तो कोई किसी को देता है तो कम हो जाता है, कलर्स हो जाता है, परंतु ये अविनाशी ज्ञान धन आप जितना देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। जितनी आप खुशी औरों को देंगे उतनी आपकी खुशी बढ़ेगी, नेचर तो आप ही बदली होती जाएगी, उतनी आपकी खुशी बढ़ेगी। आप जितना औरों को शक्ति देंगे तो आपके अंदर भी वो शक्ति बढ़ती जाएगी और आपको इतनी दुआएं मिलेगी, जिन दुआओं से क्या हो जाएगा, हमारा जीवन एकदम हल्का हो जाए। दुआओं से जीना इसमें बड़ा आनंद है। बददुआ किसी के नहीं मिले कभी भी, और दुआ किसको मिलती है, जो जिस समय जिसको मदद की आवश्यकता है उस समय अगर वो मदद करता है तो उसको दुआ मिलती। देखो कैसे, अभी वैसे तो बहुत लोग होते हैं वो पानपोई लगा के रखते हैं, पानपोई समझते हैं पानी, अभी गर्मी के दिन हो गए ना, रास्ते में मटके रखे हुए होते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं वो समझते पुण्य का काम है, पानी बेचारे प्यास से पानी पिएंगे, उसमें मिलता है पुण्य। परंतु अगर कोई समझो प्यास से तड़फ रहा है और उसको आपने एक गिलास पानी, मर रहा है आपने उसको एक गिलास पानी पिला दिया ना, वो आपको दुआ देगा, उसके अंदर से दुआ निकलेगी। और दुआ जो है ये हमारे को ऊपर उड़ाती है, हल्का बना देती है, हमको ऊपर उड़ाती है। हमारा बुद्धि का योग क्या होता है, बाबा के साथ लगने में बहुत मदद होती है। तो इसीलिए ये जो ईश्वरीय सेवा है, ईश्वरीय सेवा की यहाँ हमारे को खुशी भी प्रत्यक्ष फल मिलता है, शक्ति भी मिलती है, हमारा भविष्य भी जमा होता है और अन्य आत्माओं के दिलों के ऊपर हम राज करते। कैसे देखो, आज दुनिया में ये जो सीट के ऊपर कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, इसका आधार क्या है, इलेक्शन, इलेक्शन करते हैं ना, चुनते हैं। परंतु हमारे पास जो नई दुनिया की राजाई बनती है इसमें इलेक्शन नहीं होता, इसमें सिलेक्शन होता। इसमें जितना जितना जो प्राप्तियां कराता है औरों को उतना उतना सिलेक्ट होते जाते हैं, चुने जाते हैं कि ये सुख देने वाली आत्माएं हैं, ये सबके दिलों के ऊपर राज करने वाली आत्माएं हैं। तो इसीलिए हमारे को हमेशा ये ध्यान रखना है कि सेवा के द्वारा और बाबा की याद के द्वारा हमारी नेचर तो बदली होती है, हमारी नेचर हमें बाप समान बनानी है, हमारी नेचर हमको देवता ही बनानी है, हमारी नेचर हमेशा दिव्य बनानी है, इस बात का हमें ध्यान रखना ही है। परंतु उसके साथ साथ क्या है, हमारा नई दुनिया में भी पद मुकरर होता जाता। कभी कभी कोई आके बाबा हमेशा पूछते थे, साकार बाबा थे ना, तो कोई आता था ना पार्टी लेके, बाबा पूछता था तुम कितनी सेवा करते हो। बाबा मैं ना, कोई कोई ऐसे गपोड़े मारते हैं, बाबा मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतना लोगों को सुनाता हूँ, बहुत लोगों को मैं संदेश देता हूँ। बाबा कहता था कितनों को, मैंने बहुतों को अपना अपने जैसा बनाया। बाबा कहता था कितनों को साथ में लेके आए, एक भी नहीं आया। तो बाबा बोलते थे अभी एक भी नहीं आया है तुम्हारा, तुम अगर अपने जैसे बनाए तो और तुम्हारे साथ में आने चाहिए ना। तो बाबा परीक्षा लेता था सचमुच ये सेवा करता है या नहीं करता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ब्राह्मण माना ही सेवाधारी। बाबा ने हम बच्चों को क्यों पैदा किया, किसके लिए पैदा किया? जब यज्ञ रचा जाता है तो किसको रखते हैं निमित्त? ब्राह्मणों को रखते हैं। तो शिव बाबा ने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है उसके हम निमित्त है, यज्ञ को संभालने के लिए, यज्ञ की सेवा करने के लिए निमित्त। तो जब ब्राह्मण माना ही सेवाधारी, ब्राह्मण माना खुदाई खिदमतगार, ब्राह्मण माना गॉडली सर्वेंट। बाबा कहता है देखो बच्चे, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। ओबीडियंट सर्वेंट समझते हो, आज्ञाकारी सेवक। आज दुनिया में कोई है ऐसा आज्ञाकारी सेवक? बाबा हम बच्चों की सेवा करता है, बाबा आज्ञाकारी सेवक है तो हम कौन है? हम भी तो आज्ञाकारी सेवक है। तो जितनी जितनी हम सेवा करते हैं उतनी हमारी ही जो काया है वो कल्पतरु की तरह बन। देवी देवताएं कभी बीमार नहीं होते हैं, देवताएं कभी बूढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ये जो काया है, शरीर जो है, वो पिछले जन्म में ब्राह्मण जन्म में अपनी काया को सेवा में घिसाया है। इसीलिए बताते हैं ना, दधीचि ऋषि ने क्या किया, अपनी हड्डियां भी यज्ञ में दे दिया। हड्डियां दे देना माना क्या? हड्डियां दे देना माना सेवा करना। जैसा हम लोग देखते थे साकार बाबा थे, बाबा बहुत बारी रात भर सोते नहीं थे। बाबा से पूछते थे, बाबा आपको नींद नहीं आती है क्या? बाबा कहते थे नींद कैसे आएगी, रात को बांधेलियों की आवाज सुनाई पड़ती है, आवाज सुनाई पड़ता है, दुखी आत्माओं की दुख की कराह सुनाई पड़ती है, तो बाप को नींद कैसे आई? उस समय बैठ के साकाश देता था बच्चों, लाइट देता था, माइट देता था। तो बाबा ने सेवा तो किया परंतु अपना जो उसका पर्सनल आराम का समय वो भी सेवा में लगा दिया। इसको कहते हड्डी सेवा किया, दिल से सेवा की। हड्डी सेवा करते करते तो बिगड़ हड्डी वाला फरिश्ता बन गया, नहीं तो कैसा बन। तो वैसे ही हमें भी ये ख्याल में रखना है कि हमको भी सेवा करते हुए अपनी जो स्थिति है वो फरिश्ते जैसी बनानी, अपनी नेचर। फरिश्ते का क्या काम होता है? फरिश्ता किसको कहते हैं? कहते हैं फलाना फरिश्ता आया, वो संदेश दिया और चला गया, वो काम उस अटैच नहीं होता है, सब तरफ से डिटैच, न्यारा। फरिश्ता माना न्यारा है, जिसका ना देह और देह के दुनिया से कोई रिश्ता है उसको फरिश्ता कहते। ये भी तो नेचर है ना बड़ी, किसी से भी कोई रिश्ता नहीं रहे, न्यारा रहे। जितना जितना न्यारा रहते हैं उतना उतना हम बाप का प्यारा बनते हैं। तो इसीलिए हमारे को हमेशा अपना समय, श्वास, संकल्प सब कुछ सेवा में लगाना है और सफल करना है। आप देखो जैसे हम लोग देखते हैं, आज किसी को दूसरे देश में जाना हो, समझो मेरे को अमेरिका जाना होगा, तो यहाँ की करेंसी काम में नहीं आएगी। यहाँ का मैं रुपया लेके जाएगी तो वहाँ थोड़े काम में आएगा। हमारे को क्या करना पड़ता है? उसको ट्रांसफर करना पड़ता है वहाँ की करेंसी, वहाँ के डॉलर लेने पड़ेंगे तभी हमारे को उधर काम में आएंगे। तो उसी प्रकार हम जब नई दुनिया में जा रहे हैं तो नई दुनिया में यहाँ का जो हमारे पास पदार्थ है, जो धन है, पदार्थ है, जो तन है, ये कुछ भी हमारे साथ में नहीं चलने वाला है। इसको हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसको कैसे हम साथ में लेके जा सकते? ये तो कुछ स्थूल कुछ भी साथ में नहीं जाता है, तन मन धन समय संकल्प कुछ भी नहीं जाएगा। ये हम साथ में जरूर ले जा सकते हैं परंतु ट्रांसफर करके ले जा सकते हैं। इसको ट्रांसफर करना माना हम अपना तन मन धन समय इसको क्या करना, ईश्वरीय सेवा में लगाना। तो जितना जितना हम ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं हमारा पुण्य जमा होता है, वो पुण्य हम साथ लेकर के नई दुनिया में जाके पुण्य आत्मा बनते। तो जितना ऊंचा पद चाहिए हमको वो ऊंचा पद ट्रांसफर करने से हमको मिलता है। हम जब तक इसको ट्रांसफर नहीं करते हैं ईश्वरीय सेवा में नहीं लगाते हैं तब तक हमारा पुण्य का खाता जमा नहीं होता है। तो जितना जितना भी लगाएगा उतना उतना उसका पुण्य बढ़ता जाएगा, और सबसे हल्की चीज पुण्य ही है, वही साथ में चल सकती है, बाकी कुछ भी साथ में नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमारे को सदैव पुण्य का खाता जमा करना है, और पुण्य का खाता अपने साथ में लेकर के जाना है, पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाना है, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। तो इसीलिए अपनी नेचर को सरल बना दो, मिलनसार बना दो। कितना बड़ा देखो अपना है परिवार, परंतु आपको ये परिवार कभी अच्छा लगेगा? परिवार तभी अच्छा लगता है जब एक दो के साथ स्नेह होता है। स्नेह कैसा होगा? संबंध याद होगा कि हम सब, आप जरा थोड़ा सा विचार करो, किसी का भाई या बहन गुम हो जाता है, कोई 15 दिन के बाद या 8 दिन के बाद या 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद मिलता है, कितनी खुशी होती है। अरे मेरा भाई गुम हो गया, मिल गया, कितना खुश होते हैं। और आप और हम कितने समय के बाद मिले? कितने समय के बाद? 5000 बरस के बाद। आपको लगता नहीं कुछ? 5000 बरस के बाद मिले तो आप बताओ हमारा आपस में कितना प्यार होना चाहिए, खुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ताली भी नहीं बजाते आप तो खुश होते हैं। इसीलिए भट्टी रखते हैं ये, समझा? वो रूहानी प्यार, ईश्वरीय परिवार का प्यार, जो रूहानी प्यार हमको आगे बढ़ाने वाला है, जो रूहानी प्यार निस्वार्थ प्यार है, जो हमको शक्ति देने वाला है, वो इतने संगठन में ही तो मिलता है अपने को, नहीं तो आपको क्या मालूम आपका संगठन कितना बड़ा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना जितना तुम एक दो को उस रूहानियत से देखते हो, उस रूहानियत की नजर से देखते हो, उतना उतना क्या होता है, एक दो के अंदर वो प्यार आता जाता है। और हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? प्यार की दुनिया में जा रहे हैं ना, जहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो इसीलिए हमारी नेचर हमें कैसी बनानी पड़ेगी? प्यार वाली बनानी पड़ेगी। इसलिए रोज बाबा पहले पहले हमको कौन सा पाठ पक्का कराता है, मुरली सुनाता है, तो क्या बोलता है बाबा? पहला महावाक्य क्या है बाबा का? बोलो जोर से, मीठे बच्चे। बाबा को मालूम नहीं हम कितने मीठे बने? मालूम है क्या? नहीं मालूम? हर एक का पता है। देखो बाबा कहते, बड़ा उस्ताद है बाबा, कहते बच्चे तुम्हारी दुनिया में यहाँ टीवी है, उस टीवी में तुम दृश्य देख सकते हो, उसमें आवाज सुन सकते हो, पर मेरे पास ऐसे ही टीवी है, तुम्हारे संकल्प भी मेरे पास पहुंचते। तो हम सभी को बाबा देखता है, नहीं देखता है? देखता है ना। तो इसीलिए हमेशा कोई भी कर्म करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखो बाबा हमको देख रहा है। तो जब ये याद रहेगा कि बाबा मेरे को कौन, भगवान जो इस ड्रामा का डायरेक्टर है वो मुझे देख रहा है, तो जब बाबा देख रहा है तो हमारे इसीलिए कर्म, बोल और संकल्प कैसे हो जाएंगे? श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो हमारी नेचर तो आपे की ओर हो जाएगी फिर, हाँ, की ओर करनी नहीं पड़ेगी, परंतु हो ही जाएगी। तो तभी बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना जितना बाप से तुम्हारा प्यार है, उतना ही इस दैवी परिवार से भी तुम्हारा प्यार होना चाहिए, उतना उतना तुम्हारा सेवा से भी जरूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि अनेक आत्माएं जो भटक रही है उनको रास्ता बताने वाला कौन है? हम बच्चे ही है ना। तो बाबा ने हम बच्चों को फायर ब्रिगेड बनाया हुआ, सब तरफ विकारों की आग लगी हुई है, वो आग बुझाना हमारा काम है, क्योंकि हमारे भाई बहन है सब। तो जब हमारे भाई बहन है तो हमें उनके ऊपर क्या होना चाहिए? तरस पड़ना चाहिए। फिर आप किसी भी प्रकार की सेवा करो, ऐसा नहीं आप समझाने की, अभी बूढ़ी बूढ़ी माताएं वो क्या समझा सकती हैं? उनको नहीं आएगा अच्छा जब समझाना, बाबा ये तो समझाने को आएगा। छोटे बच्चे को भी आता है, पहला शब्द तो बाबा ही बोलता है, तो बाबा कहता है तुमको, तुम मनसा से भी बैठ करके बाबा को जो याद करते हो वो भी तुम्हारी सेवा है, वाणी से ज्ञान सुनाते हो वो भी सेवा है, और तुम्हारे कर्मों में जो श्रेष्ठता आती है वो सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि हमारे कर्मों के द्वारा ही क्या है, बाप को प्रत्यक्ष होना है, तो इसीलिए हमारे कर्म ऐसे हो जो हमारे कर्म देख के बाबा के, हमारे कर्मों के, हमारे चरित्र के द्वारा बाबा का चित्र दिखाई देना चाहिए। तो हमें ये सब सेवाएं करनी है, जो भी सेवाएं हमको जब भी मिलती है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो हरेक का उसमें योगदान जरूर होना चाहिए। धन का सहयोग होना सिर्फ योग नहीं है, ये नहीं है, सहयोग नहीं है, परंतु हर प्रकार का सहयोग हमारी मनसा में भी सदैव पॉजिटिव चलता रहे कि ये जो प्रोग्राम है बाबा का ये क्या हो जावे, सफल हो जावे। आप खुद भी अनुभव करते हो ना, देखो कोई छोटा मोटा ही प्रोग्राम होता है, आप सेंटर पर कहाँ ना कहाँ प्रदर्शनी रखते हो, सारा दिन क्या होता है आपको याद रहता है ना, मुझे प्रदर्शनी में जाना है, लोगों को समझाना है, प्रदर्शनी में जाना है, बाबा भी याद आता है, सेवा भी याद आती है, तो क्या है पाप करने से बच जाते भी कर्म करने से, तो इसीलिए सेवा जो है वो हमको पाप कर्मों से छुड़ाने वाली भी है, सेवा हमारे को परफेक्ट बनाने वाली भी है। क्योंकि हम जब भी दूसरों को समझाते हैं तो पहले खुद को सीखना पड़ता है कि हम जो दूसरों को बोल रहे हैं वो हम करते हैं। आप दूसरों को जब शिव बाबा की याद दिलाते हैं तो आपको भी शिव बाबा याद आता है, आप औरों को कहेंगे पवित्र बनो तो पहले खुद को रहना पड़ेगा तभी आप दूसरों को बोल सकेंगे, अगर ऐसा ही बोलेंगे तो उसका कोई भी असर नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है इसकी यही विशेषता है, आप पढ़ो और साथ साथ में औरों को पढ़ाओ तो जल्दी से जल्दी परफेक्ट बन जाएंगे, जल्दी से जल्दी नई दुनिया में जाने के लायक बन जाएंगे, और लास्ट में ये जो प्रकृति है पांच तत्व, ये पांच तत्व बाबा कहता है तुम्हारी सेवा करेंगे, यहाँ से ही करेंगे, यहाँ से ही तुमको बचाएंगे, इसीलिए डरना नहीं कभी भी। क्योंकि अगर हमने इनकी सेवा की हुई है तो ये हमको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये गारंटी रखो। समझो छत गिरने वाली है ना, पहले से मालूम पड़ेगा मेरे से इधर छत गिरने वाली है तो वहां से खिसक जाएंगे, गिरनी नहीं चाहिए ऐसा बोल रही सिर्फ, तो पहले से ही पता पड़ेगा, परंतु उसके लिए क्या चाहिए, हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए और प्रकृति की सेवा की हुई होगी तो हमारे को ये कभी भी ऐसा नहीं मारेगी, हम अपनी स्व इच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे और बाबा के साथ साथ चलेंगे। सबकी यही इच्छा है ना, या पहले जाने की इच्छा है, पहले तो कोई भी नहीं जाना चाहता है, कोई पहले जाने वाला, कोई एडवांस पार्टी में कौन जाने वाला है, नहीं रे नहीं कोई नहीं जाना, हाँ ठीक है हम सब साथ में चलेंगे, तभी तो शिव की बारात सिद्ध होगी ना, आगे आगे साजन और हम उसके पीछे पीछे सजनियां मांगेंगे, ठीक है पसंद है ना आप लोगों को, चलो अच्छा अभी करो बाबा को याद, ओम शांति। नेचर की ओर कैसा करना है समझ में आया ना, ये प्रकृति को भी योगदान दो और अपने जो स्वभाव संस्कार है उनको भी बाबा के साथ भेंट करते हुए शिव के ऊपर उसकी भेंट चढ़ा दो। भक्ति मार्ग में तो हमने बहुत फल फूल चढ़ाए, अभी अपने पुराने संस्कारों की भेंट दे देते हैं तो क्या हो जाते हैं, बाप समान बन जाते हैं। ओम शांति।
दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम दुनिया नई बनाएंगे।
हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम दुनिया नई बनाएंगे।
त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी,
तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी,
युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी,
युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी,
अमृत भरे कलश से सबको दिव्य अमृत पिलाएंगे,
जलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, जलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम दुनिया नई बनाएंगे।
Bye-bye.